quello, c'è un problema, magari non ci viene a senso. Arrivederci.
हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप सबके बीच में हूँ और यहाँ पे किस तरह से डिवोटीज अपना डिवोशनल सर्विस या भक्ति कर रहे हैं वो देख के मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। उनकी एक्टिविटीज़ एंथुजियाज्म इन प्रीचिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का तो हम सुनते ही हैं, और जिस तरह से टेम्पल भी इन स्मॉल प्लेस हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ वॉट वी कैन से केप्ट और अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है और भगवान की इतनी सुंदर सेवा हो रही है। स्पेसिफिकली डीडीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर ड्रेस्ड ऑल्सो इन वेरी वंडरफुल वे। सो लास्ट टाइम ऑल्सो पहले भी एक दो बार आया था मैं, तो मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली मेरे जीवन में भी। तो इस तरह से ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपके बीच में रह के कुछ मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। सो इसलिए आज के दिन आप सबसे भी मेरा ये अनुरोध है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि आई कैन कीप सर्विंग with some fraction of enthusiasm। तो आज मैं सोच रहा था कि ऑफकोर्स आज का दिन तो पूरा हमारे लिए कंटेम्पलेशन के लिए है। अलग अलग आचार्य जो हैं उनके जीवन के बारे में हम मेडिटेट कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, और विशेषकर दो आचार्यों के बारे में मैं सोच रहा था कि चर्चा करना। एक तो विष्णु प्रिया देवी जो चैतन्य महाप्रभु उनकी पत्नी हैं, और दूसरा अगर इन केस वी गेट सम टाइम देन रघुनंदन ठाकुर, उनका ब्रीफली डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्ण। तो जब मुरली कृष्ण को बता रहे थे कि आज के दिन हम सब आचार्यों के ऊपर गुणगान करेंगे, तो पहले मेरे मन में वही विचार आया कि बहुत मुश्किल है उनके बारे में गुणगान करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है टेक्स वन टू नो वन। हम किसी व्यक्ति को तभी जान सकते हैं जब हम उस स्तर के ऊपर हैं या कहीं पे आजू बाजू में हैं उस तरह। लेकिन ये जो आचार्य हैं इनका भगवान के प्रति जो प्रेम इतना गाढ़ा है या उनकी भक्ति इतनी गाढ़ी है कि वो समझना भी बहुत मुश्किल है उस तरह से। तो बहुत बार जब जय आनी लो प्रेम धन वो गाया जाता है तो मेरे को मुझे ये अनुभव होता है कि एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू फील दैट। तो उससे एम्बेरसमेंट भी फील होता है कि ये आचार्य हैं उनके प्रति इस तरह से जो सेपरेशन जो बाकी आचार्यों ने दिखाया है इस तरह से, लेकिन वो इतना मतलब उनके प्रति उन्होंने हमारे जीवन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। जो कुछ भी हमारी भक्ति चल रही है ये सब आचार्यों के जीवन के द्वारा ही हम कुछ सीखते हैं, वो कंट्रीब्यूशन होता है और उसके द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली मैं अनुभव करता हूँ कि बहुत थोड़ा सा उसके बारे में समझ मुझे मिल पाती है इन आचार्यों के द्वारा, लेकिन उससे भी वो जो थोड़ी समझ भी मिल पाती तो उससे ये अनुभव होता है कि प्रैक्टिकली हर रोज जो जीवन चलता है भक्तिमय जीवन चल रहा है, फिर भी जब भी इन आचार्यों के बारे में सुनते हैं या इनकी जो शिक्षाएं होती हैं उनके बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी एक दलदल में अगर जा रहा है। बहुत बार दूर से देखा तो दलदल और पानी एक जैसा दिखता है, लेकिन उस दलदल में अगर व्यक्ति धंसता चले जाता है कभी कभी वो बहुत धीरे धीरे धंसता चले जाता, पता नहीं चलता उसको कि वो अंदर जा रहा है करके, और उसी समय अगर कोई आके उसको वहां से निकालता है बाहर और फिर उसे तब अनुभव होने लगता है, पहले बताने लगता है कि आप दलदल में जा रहे हो और फिर उसको बाहर निकाला तो उसको अनुभूति होने लगती है हाँ कि अभी मेरा जीवन बच रहा है। तो वही रोजमर्रा का जीवन जी के भले ही भक्तिमय जीवन हो, लेकिन जब ऐसे आचार्य या प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं उनकी वाणी सुन के या प्रभुपाद के जीवन के बारे में देख के या उनकी किताबों को पढ़ के ऐसा लगता है कि हर रोज प्रैक्टिकली अपने आप से अगर भक्ति की गाड़ी चलानी जाए तो आगे जाने की जगह वो नीचे जा रही है। और जब भी प्रभुपाद की किताबों के कांटेक्ट में आ जाते हैं या प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनके शब्दों को कान में सुनते हैं या ऐसे आचार्य गण हैं उनके जीवन के बारे में हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी गाड़ी ऊपर जा रही है उस तरह से। नहीं तो किस तरह विदाउट नॉलेज द होल व्हीकल इज सिंकिंग इन या अंदर जा रही है। तो इसीलिए जो कुछ भी भक्ति में एटलीस्ट मेरा ये अनुभव होता है कि टीका हूँ वो सिर्फ ये आचार्यों के द्वारा ही कुछ हो रहा है, इस तरह से, तो इसके लिए कितना भी इनके प्रति अगर ऋण चुकाने का कोशिश किया जाए वो तो असंभव है, और कितना भी उनका गुणगान किया जाए वो भी असंभव है। मतलब जो जीवन में रोल्स और गोल्स भी बनाते हैं वो भी इनको देख के ही हो जाता है, और उसका एक्चुअल रियलाइजेशन भी नहीं है देखा जाए तो। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो पिताजी अगर शेविंग कर रहे हैं तो वो देखता है तो वो भी शेविंग करने लगता है, तो उसे समझता नहीं शेविंग क्या है, करे देख देख के शेविंग करता, उसके तो बाल भी नहीं आते यहाँ पर, फिर भी वो शेविंग करने लगता है। या फिर छोटी बच्ची होती है, अगर माँ गर्भवती है तो फिर जिस तरह वो चलती है उनको वेदना होती है, अगर ये छोटी बच्ची उसको इमिटेट करेगी तो उसको क्या समझने वाला है, कुछ समझेगा नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी आचार्यगण हैं, वो कुछ प्रार्थनाएं कहते हैं या वो किस तरह से भगवान की भक्ति की जानी चाहिए वो बताते हैं, वो लाके अपनाने लगते हैं, फिर भी उनका जो डेप्थ ऑफ रियलाइजेशन है, उनका जो साक्षात्कार की जो गहराई है और भगवान के प्रति उनका जो प्रेम और एक निष्ठा है, उसको समझना यानी बहुत ही मुश्किल है। फिर भी उससे कुछ तो आगे बढ़ने के लिए हमको एक दिशा मिलती है देखा जाए तो। इसीलिए जब वासुदेव घोष चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यदि गौर न हो तो तबे की हो तो कैमोने धरी नु दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानी तो के माधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार ब्रज युवती भावेर भकति शकति होई तो कार। तो बहुत सुंदर तरह से बताते हैं कि अगर यदि गौर न होई तो, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो राधा कृष्ण का महिमा अर्थात उनकी भक्ति कैसे करनी कैसे पता होता। तो इसीलिए वो कहते हैं ब्रज युवती भावेर भकति, जिस तरह से व्रज की जो युवतियां या गोपियां हैं वो उस भाव भक्ति को कर रही है जो अनेक अनेक समय तक, अनेक अनेक कालों तक कह सकते हैं या युगों तक कह सकते हैं कि लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में, और वो भाव भक्ति कैसे करना, प्रवेश चातुरी सार, और उसमें प्रवेश करना तो और बड़ी बात है देखा जाए तो। उसके लिए जो चतुराई लगती है अर्थात वो कैसे किया जाए वो समझना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इन आचार्यों की जीवन के द्वारा, जैसे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने खुद ये दिखाया कि कैसे पॉसिबल है, और उनके साथ जो पार्षद हैं उनके जीवन के द्वारा भी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो फिलॉसफी, इतना जो महान तत्व ज्ञान दिया है भगवान है, उसमें फिर माधुर्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, इस तरह से गोलोक वृंदावन में प्रवेश जो बिल्कुल असंभव है, उसको बहुत सहजता से हम अपना रेगुलर जीवन करते हुए, रेगुलर भक्ति करते हुए कैसे वहां प्रवेश कर सकते हैं, ये हमें इन आचार्यों ने सिखाया है, नहीं तो खुद से समझना उसको बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब भी इनके जीवन के बारे में हम स्मरण करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जीवन जिया है, जस्ट वी ट्राई टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स, उनके उपदेशों या उनके जीवनी को देख के अगर हम कुछ उनका अनुसरण करने लगे तो ऑटोमेटिकली वील एंटर इन टू दैट रेल, हम बिना कुछ प्रयास के ही वहां प्रवेश करेंगे और हमारे हृदय में भी हम देखेंगे कि वही भक्ति का उदय हो रहा है। तो इसीलिए जैसे हम जानते हैं विष्णु प्रिया देवी, उन्होंने किस तरह से चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, उससे हमको अपने वैयक्तिक जीवन में भी बहुत कुछ सीख मिल सकती है, और भगवान की भक्ति कैसे की जाए उसके लिए सीख मिल सकती है। तो मुझे तो स्पेसिफिकली बहुत प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से, सम एस्पेक्ट्स आर देयर, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो विष्णुप्रिया देवी वो भगवान की भू शक्ति हैं, भू शक्ति का स्वरूप हैं, और सनातन मिश्रा उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय नवदीप में ही सनातन मिश्रा ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री हैं, और बचपन से ही वो भगवान के प्रति बहुत ही डिवोटेड थी, और उनका हर रोज का कार्य यानी सुबह वो जाके गंगा जाती थी और गंगा में गंगा की पूजा करती थी, और उनका जो चरित्र है या कैरेक्टर बहुत ही, शी वॉज फुल ऑफ और अबोर्ड ऑफ ऑल द क्वालिटीज, सब गुणों उसका वो भंडार थी, और हर रोज उसी तरह से सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है वो भी गंगा में, गंगा के वहाँ पे स्नान करने के लिए आती थी, फिर गंगा की पूजा करती थी, और ये सब जो वरिष्ठ रहते थे उनसे बहुत आदर करती थी। तो एवरी डे हर रोज जो है विष्णुप्रिया वो गंगा की पूजा करने के बाद फिर वहां पे जब सची माता आती थी, सची माता के चरणों को स्पर्श करती थी और उनको आदर करती थी इस तरह से। तो जब भी सची माता देखती थी उनको, तो हर रोज उनका ऐसा विचार आता था कि ये जो सुंदर युवती है वो कौन है, और इसमें पूरा मतलब इस तरह से उसका चरित्र है और इतने गुण उसमें भरे हुए हैं, निश्चित जो भी इसका पति होगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। और इसीलिए वो उनको हर रोज आशीर्वाद देती थी कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगी, आपको बहुत अच्छा पति मिले इस तरह से। और उसके बाद हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनका जो है विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ। और जब चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल गए, ईस्ट बंगाल में जाने के बाद उस समय लक्ष्मी प्रिया उनके विरह में उनको सर्पदंश हुआ और वो भगवत धाम अपनी लीला को समाप्त करके वापस चली गई। तो उसके बाद जब सची माता हैं उनको सदैव लगता था कि निमाय का दूसरा विवाह होना चाहिए, जिससे कि वो वापस, क्योंकि पहला जो उनका पुत्र था विश्वरूप वो घर छोड़ के संन्यास लिया था और चले गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं विवाह करूंगा। और इसलिए उन्होंने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में सेवा कर रहे थे। लेकिन अभी ये जब सची माता, जब लक्ष्मी प्रिया वो छोड़ के चले गई, तो अभी सची माता को लग रहा था कि ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनको वो भी चिंता थी। तो सोच रहे थे कि किससे उनका विवाह किया जाए। तो उसी समय उनको ऐसा लगा कि जो ये विष्णु प्रिया है उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का या निमाय पंडित का विवाह होना चाहिए। तो इसीलिए वहां के एक ब्राह्मण, उनका नाम काशी मिश्रा, जो वहां के मैरिज ब्यूरो के इंचार्ज थे, वर वधु उनका जो मिलन कराना है या विवाह कराना है उस तरह से, तो उनको बुलाया और उनको कहा कि मेरी ये इच्छा है, अगर आप सनातन मिश्रा जो है उनसे इसके बारे में बात करेंगे। और ये सुन के काशी मिश्रा को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि निमाय पंडित जैसा इस पूरे नवद्वीप में या पूरे ब्रह्मांड में कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं है, और उसके लिए जो विष्णुप्रिया जैसी कोई और अर्धांगिनी या पत्नी हो ही नहीं सकती है, तो ये बहुत अच्छा मेल है। और बहुत आनंद हुआ उसको ये जस्ट प्रस्ताव सुन के, और पूरे उत्साह से वो गए सनातन मिश्रा से मिलने के लिए और उनको बताया। तो जैसे सनातन मिश्रा ने भी सुना, उनको बहुत आनंद हुआ इसके बारे में, और तुरंत फिर जो है विवाह की तैयारी होने लगी। तो ऑफकोर्स चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में दिया हुआ है किस तरह से ये विवाह हुआ। जैसे ही ये पता चला तो वहाँ पे जो एक बहुत भगवान के अच्छे महान भक्त थे और बहुत अमीर थे डिवोटी, उनका नाम था बुद्धिमंत खान, उन्होंने कहा कि मैं खुद ये मैरिज स्पॉन्सर करता हूँ, ये अभी दिस विल नॉट बी अ पुअर मैंस मैरिज, एक बहुत धूमधाम से ये विवाह होगा इस तरह से। और पूरी तैयारी करने लगे, और साथ में वहीं पे मुकुंद संजय जो जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु अपना गुरुकुल या पाठशाला चलाते थे, तो वहां पे मुकुंद संजय भी आए और वो बुद्धिमंत खान के पास आए। उनको पता चला कि पूरा मैरिज उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे भी कॉन्ट्रीब्यूशन करने दीजिए, हम दोनों मिलकर करेंगे, को स्पॉन्सर मैं रहता हूँ। तो दोनों उन्होंने पूरी तैयारी की, और ये बहुत ही मतलब जो विवाह हो रहा था तो उसमें बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। और वहां पे फिर चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी यहाँ पे आता है मैरिज में भाग लेने के लिए, तो उन्हें हमारी ओर से गिफ्ट देना है, और बहुत अच्छे गिफ्ट्स रखे हुए थे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रथा क्या है कि ये जो कार्य हो रहा है, दोनों पति पत्नी उस साथ में आके उनका विवाह हो रहा है, तो वहां पे जो सब आ रहे हैं उनसे आशीर्वाद लेना है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी उनको। और आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, जब हम किसी को प्रसन्न करेंगे तो उससे आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो भी कोई ये मैरिज अटेंड करने के लिए आता है तो उनको हमारी ओर से हम भेंट दें। आज थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाता है, क्योंकि मैरिज को आता है तो लोग अपेक्षा करते कि वो भेंट लेके आए इस तरह से। सो दैट इज नॉट द ट्रेडिशन, या प्रथा वो नहीं है, क्योंकि भेंट लेके आएंगे उससे उनका वो क्या आशीर्वाद, आशीर्वाद फिर भी देते ही हैं, लेकिन वो खुद आशीर्वाद चाहते हैं इसीलिए उन्होंने भेंट देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से किया अनाउंसमेंट, तो बहुत अच्छे से भेंट आ रही थी। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि बीच बीच में कुछ लोग वापस लाइन, मतलब बहुत भेंट थी, लाइन में लगे हुए थे, और कभी कभी सेकेंड टाइम लाइन में लग जाते थे भेंट लेने के लिए, और कभी कभी थर्ड टाइम लाइन में लग जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, तो जनरल सिनेरियो क्या होगा कि अरे एक बार मिल रहा है ना, तो फिर वापस क्यों खड़ा रहना चाहिए लाइन, ऐसा विचार आएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, उनका एकदम देखने का नजरिया अलग था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर लाइन में लग रहे हैं, एक ही बार में आप उनको तीन भेंट दे दीजिए, जिससे फिर कोई वापस, यू नो, नोबडी विल स्टैंड इन लाइन, उस तरह दे शुड फील कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इस तरह से। तो देखिए, मतलब ये भाव चैतन्य महाप्रभु का था कि किस तरह से जो सब लोग आए उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए, जिससे कि उनकी कृपा चैतन्य महाप्रभु और विष्णुप्रिया उनके ऊपर आ जाए। और इस तरह से सब वैष्णव की कृपा के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। ऑफकोर्स चैतन्य भागवत में और डिटेल दिया हुआ है, मैंने जस्ट आपको छोटा सा या ब्रीफ में बताया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने खुद दिखाया कि हाउ इज द आइडियल हाउस होल्डर, और विष्णुप्रिया किस तरह से वो आदर्श गृहिणी हैं, उन्होंने दिखाया। पूरा सुबह से लेकर शाम तक विष्णुप्रिया जो हैं घर के अलग अलग कार्यों में लगी रहती थी, तुलसी की पूजा है, या खुद डेटी वर्शिप करती थी भगवान के अर्च विग्रह की। और चैतन्य महाप्रभु हर रोज हर समय कोई भी वैष्णव दिखते थे उनको बुलाते थे घर में प्रसाद के लिए। कभी एक आएंगे, कभी दो आएंगे, कभी दस वैष्णव आ जाएंगे, और बहुत बार तो बिना बुलाए आ जाते थे। मतलब ऐसा उन्होंने विष्णुप्रिया को बोला नहीं कि आज आने वाले हैं मेहमान, अचानक लेके आ जाते थे। चैतन्य महाप्रभु बाहर निकले, अगर कोई दिखे वैष्णव, उनको बुला के लेके आ जाते थे, और ये सडनली होता था। लेकिन कभी भी विष्णुप्रिया ने जो है नहीं, कभी कहा नहीं, वो सदैव वो चैतन्य महाप्रभु की इस तरह से सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी कि वैष्णव की सेवा की जाए। और देर वॉज नो कंप्लेन, नो डिमांड, कुछ भी मांगती नहीं थी, बस एक ही चीज, एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व वैष्णवास, किस तरह से मुझे और से और अधिक सेवा मिले और मैं वैष्णव की सेवा करती रहूं। इस तरह से विष्णुप्रिया जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के साथ कार्य या भगवान की सेवा में लगी हुई थी, और साथ ही में सची माता को अपने माँ के समान ही पूरी तरह से उनकी सेवा में तत्पर थी। जय श्री श्री राधिका रमन भगवान की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की। तो दिस इज व्हाट इज अ वेरी आइडियल हाउस होल्ड लाइफ, इस तरह से आदर्श जीवन देख सकते हैं कि विष्णुप्रिया इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगी हुई थी। और बाद में हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से नवद्वीप में प्रचार कर रहे थे। पहले तो वो निमाय पंडित थे, लेकिन जब उन्होंने ईश्वरपुरी का आश्रय लिया, फिर अपने भक्त का भाव वो दिखाने लगे और दिन रात संकीर्तन में लगे रहते थे। और उनका यही इच्छा था कि सब लोगों को भक्ति में वो डुबा दें। और वो करते हुए लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ पढ़ुया जो बहुत ही पढ़े हुए ब्राह्मण थे, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते थे, और नास्तिक, ये दो प्रकार के लोग थे जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी हुई भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जो वो पढ़ुए ब्राह्मण थे वो सिर्फ कर्मकांड इसमें लगे रहते थे और उसमें अपना समय बिताते, या फिर देवी देवताओं की पूजा करने में, लेकिन भक्ति का नाम लेश भी नहीं लेता था। या और कुछ दूसरे स्कॉलर थे जो ब्राह्मण, वो अगर चर्चा भी करेंगे शास्त्र के ऊपर, लेकिन उसमें भले ही भागवत के ऊपर टीका करे या गीता के ऊपर टीका करे, उसमें भक्ति को बहुत एक्सपर्टली अवॉइड कर देते थे। यानी उनको उसका गंध भी पता नहीं चलता था कि भक्ति क्या है, इस तरह। तो चैतन्य महाप्रभु, उनको बहुत दुख होता था ये देख के। तो हम जानते हैं एक बार जैसे चैतन्य महाप्रभु वो पूरी तरह से कृष्ण भावना में या कृष्ण के भाव में विरह में थे, और उसमें वो गोपी गोपी करके कह रहे थे। कुछ वहां पे उनके साथ ही सहपाठी विद्यार्थी आए और उन्होंने कहा कि आप ये गोपी गोपी क्या कह रहे हैं, आपको कृष्ण का नाम लेना चाहिए, गोपी का नाम लेके क्या होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस समय आंतरिक भाव में थे, और फिर वो कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण का नाम लेके क्या होने वाला, ये कौन है कृष्ण। और फिर जैसे गोपी के भाव में, जैसे गोपियां कृष्ण को उल्हाना देती हैं, उस तरह से वो उल्हाना देने लगे। और तुरंत उन्होंने अपने हाथ में डंडी लेके सीधा भागे उनके पीछे, और वो डर गए कि अभी ये मारने, निमाय पंडित मारने के लिए आ रहा है। और सब ब्राह्मण भागने लगे और पीछे ही भाग रहे थे, और किसी तरह से वो अपना जान छुटा के सब मिले। और सब मिलके उन्होंने कहने लगा, ये निमाय पंडित अपने आप को क्या समझता है, वो भले ही जो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा हुआ तो क्या हुआ, हमारे पिता भी तो कितने बड़े पंडित हैं, अगली बार अगर उसने ऐसा किया तो हम उसको अच्छा सबक सिखाएंगे, उसकी भी पिटाई करेंगे। तो जब इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के साथ वो आदान प्रदान होने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं और भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन कुछ वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे थे जो इस भक्ति को स्वीकार कर रहे थे और भगवान के भक्त बन रहे थे, लेकिन कुछ वर्ग के लोग नास्तिक और ये पढ़ियो वो उसको स्वीकार नहीं करते, वो सोचते कि ये साधारण ब्राह्मण है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने सोचा इनका उद्धार कैसे होगा, अगर मैं सन्यास लेता हूं तो क्या उस समय सन्यासी का बहुत सम्मान होता था, तो नहीं, कुछ तो सन्यासी समझ के मुझे ये दंडवत प्रणाम करेंगे और मुझे दंडवत कर रहे हैं, यानी वो भगवान को दंडवत कर रहे हैं जिसके द्वारा इनकी भक्ति में प्रगति होगी, इसीलिए मुझे सन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने ऐसा निर्णय किया और फिर अपने जो निकट पार्षद थे जैसे नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंद, उनको उन्होंने कहा, अपना हृदय व्यक्त किया कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं। और ये धीरे धीरे ये खबर जो है भक्तों में पहुंचने लगी, उनका हृदय बहुत टूटने लगा कि अभी चैतन्य महापुरुष सन्यास लेने वाले हैं, यानी फिर उनका संघ हमको वापस अभी मिलेगा नहीं। और अलग अलग वैष्णव जो है उनको बताने लगे, तो जैसे स्वयं नित्यानंद प्रभु भी कहने लगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, सची माता उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं, और विष्णुप्रिया वो आपके साथ इतना प्रेम करती, इतनी सेवा करती, उनको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है अपने जो इस निर्णय में बहुत ही अचल थे, तो ये देख के फिर सब उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप स्वराट, स्वयं भगवान स्वराट हैं, तो आपकी इच्छा जो है कौन उसको रोक सकता है। लेकिन यही समाचार जो है वो विष्णुप्रिया को पता चलता है। तो जैसे ही हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु वो अपना घर छोड़ के उन्होंने संन्यास लिया था, तो उसके पहले पूर्व रात्रि को विष्णुप्रिया हर रोज की तरह वो चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम कर रहे थे तो उनके चरणों को वो दबा रही थी। उस समय जब चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे और साथ ही में, क्योंकि अभी विष्णुप्रिया उनको लग रहा था कि वो कैसे पूछे भी कैसे बताए भी कैसे, और साथ में उनके हृदय में बहुत दुख भी था इस तरह से, और साथ में वो चैतन्य महाप्रभु को दुख भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन अगर देखा जाए उस समय तो चैतन्य महाप्रभु की उम्र सिर्फ 24 साल की थी, तो विष्णुप्रिया ने 16-17 साल की उनकी उम्र होगी उस समय, तो इस उम्र में है और बाद में अपने पति से विरह और पूरे जीवन, और वो पति भी कौन, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, और कौन हो सकता, तो यानी कितना उनका विरह हो सकता है हम उसकी विचार भी या कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जैसे वो उनके चरणों को दबा रही थी, साथ में ही उनको अपने अश्रु रोकने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन रोके नहीं जा रहे थे विष्णुप्रिया, फिर भी कुछ अश्रु जो है चैतन्य महाप्रभु के जैसे ही चरणों पर गिरे और अब जाते थे, तो दुख के अश्रु थे तो सीधा गर्म होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनकी नींद खिली, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो वो कह रहे थे कि मैंने सुना है कि आप हमें बहुत ही जल्दी छोड़ के जाने वाले हैं। तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु, उनको भी पता चला कि विष्णुप्रिया को भी पता चल गया है, तो उन्होंने कहा, मतलब वही बता रहे थे कि वो किस तरह से वो इस भक्ति का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनका ये विचार था। और फिर उन्होंने समझाया विष्णुप्रिया को कि देखिए हम वो तत्व ज्ञान समझाने लगे बेसिकली उस समय, तो चैतन्य मंगल में उसका बहुत सुंदर उल्लेख आता है। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में खुद भगवान के अंश हैं, आत्मा है, शरीर नहीं है, कुछ समय के लिए हम साथ में आते हैं और कुछ बाद में हमको जाना होता है, तो अभी ये भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो कृपा करके मुझे ये अनुमति दीजिए इस तरह से। तो विशेष देखा जाए तो यहां पे विष्णुप्रिया जिस तरह से उन्होंने ये भाव प्रकट किया तो बहुत मुश्किल है देखा जाए तो विष्णुप्रिया भले ही वो हृदय से चाहती कि नहीं चैतन्य महाप्रभु यहीं पे रहें, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को दुखी नहीं देखना चाहती थी, जो उनका जो मिशन है उसको वो रोकना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए विष्णुप्रिया उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, आपको यही प्रसन्न करता है, तो मुझे ये स्वीकार है इस तरह से। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे, अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शना मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु स एव नापरः। कि जिस तरह भक्त, यानी जो सर्वोच्च भक्ति है कि भगवान भले किसी तरह से भी कार्य करें, वो कहते हैं जैसे मुझे आलिंगन दे या दर्शन न दे के मर्महात करें, लेकिन फिर भी वो मेरे स्वामी नित्य बने रहेंगे। तो ये भाव विष्णुप्रिया दिखा रही थी। मतलब इस अवस्था में बहुत मुश्किल है उनको नहीं कहना, मतलब हाँ कहना, फिर भी विष्णुप्रिया ने उनके लिए हाँ कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन वो रुके नहीं। तो ऐसे ही हम देखते हैं, ये कोई नहीं, अगर सीता माता का एक्सपांशन है देखा जाए तो सीता माता ने भी इसी तरह से किया था। जब हम जानते हैं कि प्रभु राम, उनके बिना तो सीता माता रह नहीं सकती थी, भले ही एक साल जो है उनको रावण के साथ रहना पड़ा, रावण इतना अत्याचार कर रहा था सीता माता के ऊपर, वो कह रहा था कि मैं आपको मार डालूंगा, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, या फिर इतना ऐश्वर्य दिखा रहा था, फिर भी सीता माता, उन्होंने एक क्षण भी प्रभु राम के अलावा किसी का विचार नहीं किया था। ये उनका असीम प्रेम था प्रभु राम के प्रति, असीम भक्ति थी। और इसके बाद जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ, रावण का वध हुआ, और फिर उसके बाद राम, उन्हें सीता माता के पास में आके कहा, तो ठीक है, अभी आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, हमने आपको मुक्त कर दिया है। तो जब ये सुना तो जैसे सब लक्ष्मण और सब वानर, उनमें ऐसे सन्नाटा छा गया कि ये क्या कह रहे हैं प्रभु रामचंद्र, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पूरा युद्ध किया किसके लिए, सीता माता के लिए, और अब युद्ध होने के बाद सीता माता को कह रहे हैं आपको जहां जाना जा सकते हैं। अरे वो आपकी पत्नी है, आपके साथ ही तो आएंगी, और किसके साथ आने वाली। तो फिर प्रभु राम, उन्होंने मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं कि राम को तो सबसे ज्यादा दुख हो रहा था ये करते हुए, राम भी ऐसा एक क्षण नहीं था जब सीता माता को उन्होंने वो भूले थे, लेकिन उन्हें पता था कि लोगों की क्या मानसिकता होगी, उसको जो है शुद्ध करने के लिए और सीता माता का जो प्रभु राम के प्रति जो भक्ति है वो दिखाने के लिए वो प्रभु रामचंद्र ऐसा कार्य कर रहे थे। तो फिर हम जानते हैं कि फिर सीता माता, उनकी अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा से वो बाहर आई, जिससे कि पूरे संसार को पता चला कि उन्होंने भगवान के अलावा किसी और के बारे में विचार नहीं किया था। और उसके बाद वो अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में फिर रहते हैं। और उसके बाद जब राम को पता चलता कि कोई एक साधारण धोबी वो ऐसा कह रहा है, कि अपनी पत्नी को कह रहा था कि आप एक रात घर से बाहर रही हैं तो इसलिए आप यहां से चले जाइए, मैं वो राम की तरह नहीं हूं, जो उनकी पत्नी जो एक साल रावण के साथ रही और फिर भी उसको स्वीकार किया, और भले अग्नि परीक्षा हो गई थी। तो जब प्रभु राम ने सुना तो उन्होंने सोचा कि वो तो स्वयं राजा हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करना होगा। तब वो लक्ष्मण को बुलाते हैं, और लक्ष्मण को बुला के कहते हैं कि देखिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, और सीता को अभी आपको वन में छोड़ना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ये सुनते हैं, क्योंकि पहले भी सती जब वो अग्नि परीक्षा थी तो उनको ही लकड़ी ये सब रचने के लिए कहा था। तो लक्ष्मण को बहुत ही सख्त, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं आपको करना पड़ेगा। तो बहुत ही बुरा लगता है लक्ष्मण को, लेकिन अभी उनको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से, और फिर कहते कि लेकिन आपको अभी बताना नहीं है सीता माता को, उनको आप बताइए कि जब जब से हम अयोध्या वापस आए हैं, तो बहुत बार उन्होंने मेंशन किया था कि देखो वो दिन जब हम वनवास में थे तो कितने अच्छे दिन थे, साधुओं का संग मिलता था हमको, और वो शांत वातावरण था जहाँ पे हम बहुत शांति से भगवान के ऊपर स्मरण कर सकते थे। तो उनको बताइए कि मैं वापस आपको एक बार वहाँ टूर के लिए लेके जा रहा हूँ, इस तरह से। तो ये बहुत ही मुश्किल था लक्ष्मण के लिए। तो लक्ष्मण फिर भी जो है वो सीता माता को बताते हैं कि हम पास ही के जो वन है वहाँ पे जाके फिर वहाँ ऋषि मुनियों से मिलेंगे। और वहाँ पे सीता माता फिर बहुत खुश हो जाती हैं, और खुश होकर रथ पे बैठती हैं, और उन्होंने कहा कि राम अभी नहीं आ रहे हैं, कार्य में है, तो मैं आपको लेके जाता हूँ। तो रास्ते में जाते हुए सीता माता देख रही है और बहुत प्रशंसा कर रही है इस पूरे वातावरण का, कि देखिए ये पेड़ कैसे हैं, ये कैसा है, चिड़ियों का चहकना कैसा है। लेकिन लक्ष्मण पूरे इसमें कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बोल भी कैसे सकते हैं, उनको तो ये सहन ही नहीं हो पा रहा था ये कार्य। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास में, तो वो कहते हैं कि अभी आश्रम आ गया है, तो अभी आप उतरिए। तो जैसे बोलते हैं कि आप उतरिए, तो सीता माता को समझता है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो पुष्टि क्या है, तो तब वो बताती हैं कि राम चाहते हैं कि आप यहीं पर रहिए करके, इस तरह से। सीता माता को बहुत बड़ा धक्का लगता है, लेकिन फिर भी सीता माता को समझता है कि राम स्वयं उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अभी वो राजा भी हैं और उनको एक आदर्श स्थापित करना है, इसके लिए वो इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा उनको त्याग करना पड़ रहा है, और मैं उनकी अर्धांगिनी होने के साथ ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे उनका सहयोग करना चाहिए, भले उसके लिए मुझे भी बहुत बड़ा त्याग करना हो। तो वो सहयोग करने के लिए फिर सीता माता जो है तुरंत तैयार हो जाती हैं और कहती, ठीक है मुझे पता है कि ये किस लिए किया जा रहा है, तो आप जा सकते हैं। और उस समय के बाद सीता माता वहीं पर रहती हैं, तो पास ही में जैसे कानपुर के पास में ही वाल्मीकि मुनि का आश्रम है बिठुर वहाँ पे, और वहाँ पे लवकुश दोनों फिर प्रकट हुए। और लवकुश को बचपन से ही वाल्मीकि मुनि ने रामायण सुनाया था, लेकिन उनको बताया नहीं कि सीता माता कौन है, और वो लवकुश कौन है वो बताया नहीं उनको। ये बताया था पूरा रामायण, और रामायण और उत्तर रामायण नहीं बताया उनको। अयोध्या तक गए और सीता माता वो है उस नहीं, पूरा उत्तर रामायण वो भी बताया था पूरा उस तरह से। तो अभी जो है लवकुश हर जगह पे जाके ये जो रामायण सुनाते थे, तो उस तरह अयोध्या नगरी में भी आए, उनको भी बहुत इच्छा थी कि राम का दर्शन करें। और वो अयोध्या नगरी में आने के बाद वो राम ने स्वयं उनको बुलाया और फिर रामायण का पाठ कराने लगे, तो राम को भी बहुत आनंद हुआ ये सुन के रामायण। और ये होने के बाद फिर जो है लवकुश उन्होंने उनका विराम लिया और वो वापस गए, और जाने के बाद उनको फिर भी ये समझ नहीं आता कि सीता माता के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया वो एस्पेक्ट। बाकी सब तो उनको एप्रिसिएशन था रामायण के ऊपर, राम के चरित्र के ऊपर, लेकिन ये जो है पार्ट लवकुश को भी इतना उसका समझ नहीं हो पा रहा था। तो फिर भी इसीलिए उनको थोड़ा क्रोध था राम के ऊपर। और फिर वो अपने आश्रम में आए, और हम जानते कि जब अश्वमेध यज्ञ होने वाला था तो दोनों अश्वों को लवकुश ने रोक लिया, कि वो तब तुरंत अलग अलग वहां पे लड़ने के लिए आए। पहले शत्रुघ्न आए, उन्होंने कहा कि ये स्वयं राम उनके अश्व हैं इसलिए आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन उनको ये राम के इस एस्पेक्ट से जो वो ना खुश थे इसीलिए उन्होंने अश्वों को पकड़ के रखा था। तो बोला नहीं नहीं उनके युद्ध करना पड़ेगा। तो शत्रुघ्न ने कहा फिर मुझसे आप युद्ध कीजिए, और वो युद्ध हुआ, शत्रुघ्न को उन्होंने हरा दिया। और ये समाचार पता चला तो बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो गया करके। शत्रुघ्न क्योंकि शत्रुघ्न है, नाम ही है शत्रुघ्न, शत्रु का जो नाश करता है वो शत्रुघ्न है, और उनको हरा दिया छोटे बालकों ने। ये भरत महाराज को भरत को पता चला, तो स्वयं भरत लड़ने के लिए आए, भरत को भी हरा दिया उन्होंने। और जब ये पता चला तो फिर अभी स्वयं हनुमान को भेजा गया, तो अभी हनुमान युद्ध करने के लिए आए। और हनुमान वो तो कितने पराक्रमी हम जानते ही हैं। तो जैसे ही वो युद्ध करने के लिए आए तो लवकुश वो प्रभु राम का गुणगान करने लगे, और प्रभु राम का गुणगान करने लगे तो हनुमान भी राम का गुणगान करने में लग गए, और वो इतना मग्न हो गए लवकुश ने उनको बांध दिया, और ये हनुमान को समझा ही नहीं कि उनको बांध दिया है करके इस तरह से। तो बंधे हुए थे उसमें राम का गुणगान चल ही रहा था, लेकिन युद्ध रुक गया था। और जब ये पता चला कि कोई कुछ समाचार नहीं, तो लक्ष्मण आए फिर युद्ध करने के लिए, लक्ष्मण को भी वहां पे हरा दिया। तो ये जब पता चला राम को बहुत आश्चर्य हुआ, ये दो बालक है कौन जो इन्होंने इन सबको हरा दिया है। तो स्वयं युद्ध करने के लिए प्रभु राम वहां पे आए, और राम आने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा, फिर अब क्षत्रिय बोल चर्चा भी होती है, आदान प्रदान भी होता है, तो राम ने कहा कि बालकों आपको पता नहीं है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही राम बहुत क्रोधित हो गए और उन धनुष पे उन्होंने अपना बाण लगाया, और जैसे ही वो बाण छोड़ने वाले थे उस समय माता सीता तुरंत आती हैं, और फिर जोर से चिल्ला के कहती, नहीं नहीं ये आपके ही पुत्र हैं, ऐसा कहती हैं। और जैसे ही राम सुनते हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, तो तुरंत वो फिर धनुष बाण जो है साइड में रख देते हैं, मारना छोड़ते हैं। और तब लवकुश को पता चलता है कि प्रभु राम है और हम उनके पुत्र हैं, यानी ये माता सीता है। तो उनको भी बहुत आश्चर्य होता है कि हम माता सीता के पुत्र हैं या प्रभु राम के पुत्र हैं, और हमको अभी तक पता नहीं था। अर्थात माता सीता उन्होंने अभी तक लवकुश के सामने ये प्रकट भी नहीं किया कि मैं सीता हूं करके, मतलब इस तरह से उन्होंने व्यवहार किया और राम के प्रति ऐसी भक्ति और श्रद्धा दिखाई जिससे कि लवकुश को भी ये पता नहीं चले। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। एक तो है कि माता सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रही, लेकिन अब जो अंदर दुख था वो अंदर ही था उनके, कभी लवकुश के सामने प्रकट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर ऐसा मैं प्रकट करूं लवकुश को और बुरा लग सकता है और शायद वो प्रतिशोध लेने के लिए राम के पास जा सकते हैं इस तरह से। तो ये भाव जो है माता सीता का, यानी कि किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा जो है उनको करनी और उनका सहकार्य करना है। तो वही यहां पे हम देखते हैं विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को लेके आए थे और वो प्रचार करने में वो लगे हुए थे, तो भले उनके लिए बहुत देखा जाए तो एक बहुत बड़ा धक्का है कि अभी उनका पूरा जीवन वो कैसे जिएंगे, अब वो और सची माता ही है सब, उनको वो पूरा जीवन जीना है और चैतन्य महाप्रभु भी वो नहीं है, संन्यास ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा वो करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सहयोग कर सकती हैं तो उसके लिए विष्णुप्रिया तैयार थे। ये उनका बहुत बड़ा त्याग है हम देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे इतने बड़े तो प्रसंग नहीं आते हैं, देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे प्रसंग आते हैं जहां पे अगर हम अपने जीवन में कोई सेक्रीफाइस या हमारे जीवन में कोई हम अगर त्याग करते हैं जिससे कि प्रभुपाद द्वारा दिया गया ये बहुत सुंदर मिशन वो आगे बढ़ सके, तो उससे बड़ी हमारे जीवन में जो उपलब्धि क्या हो सकती है। तो देखा जाए तो प्रभुपाद ने तो कितना बड़ा त्याग किया है कि इस उम्र में वो प्रचार के लिए गए थे। अगर वही चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति दी है, लेकिन मैं जस्ट विचार कर रहा था अगर प्रभुपाद हमको ये पहुंचाते नहीं तो इन आचार्य के बारे में भी हमको पता नहीं चलता क्या है करके, और इस्कॉन में आने के बाद इन आचार्यों के जो महानता या विशेषता उसके बारे में पता चला, उसके पहले तो पता नहीं था। तो प्रभुपाद ने वो सेक्रीफाइस किया है इसीलिए हमको पता चला है। इसलिए अपने जीवन में कोई नॉर्मल भक्ति तो चलती रहती है, हमारी नॉर्मल रूटीन चलता रहता है, लेकिन कभी कभी भगवान अरेंज कर देते हैं हमारे जीवन में कोई एक सिचुएशन जिसमें हमें एक स्टेप से ज्यादा ही स्टेप लेना पड़ता है, तो उस समय ये प्रश्न उठता है कि ये तो बहुत है, बहुत मुश्किल है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो इन आचार्यों के जब जीवन को हम विचार करते हैं कि इन्होंने क्या नहीं किया है, मतलब जो विचार के भी परे है वो करके दिखाया है उन्होंने। किसके लिए? सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही हेतु के लिए कि किस तरह से महाप्रभु का जो मिशन है वो आगे बढ़ते रहे और हमारे लिए प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ते रहे। उसके लिए कुछ भी करना हो तो तत्परता हम इनसे सीख सकते हैं। तो इतना करने के बाद विष्णुप्रिया उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बना रहा। तो चैतन्य महाप्रभु भले जगन्नाथपुरी रहते थे तो उन्होंने उनके एक पार्षद वंशीवदन उनको कहा, वंशीवदन ठाकुर उनको कहा कि आप स्वयं जगन्नाथ नवद्वीप जाइए और वहां पे मेरी माँ सची माता है और विष्णुप्रिया उनको दोनों का देख रेख कीजिए। तो वंशीवदन वहां पे आए और वो सची माता और विष्णुप्रिया उनको पूरी तरह से देख रेख कर रहे थे और विष्णुप्रिया जो हैं उनका विरह देख के महाप्रभु के प्रति चैतन्य महाप्रभु की अनुमति से उन्होंने ही डीटी कार्व की। चैतन्य महाप्रभु की जो आज भी हम डीटी देखते हैं मायापुर के अंदर, नवद्वीप ना, नवद्वीप, नवद्वीप के अंदर जो धामेश्वर महादेव, धामेश्वर महाप्रभु हैं, वो उन्होंने कार्व किया था और उसका हर रोज जो है उनके सामने बैठ के विष्णुप्रिया जो है हरे कृष्ण का जप करती थी। और आगे जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम को छोड़ के अपनी लीला को प्रकट करके वापस नवद्वीप या गोलोक वृंदावन जाते हैं तो उस समय विष्णुप्रिया इतना विरह दिखाती थी कि दिन रात सिर्फ भगवान के नाम का जप करती थी और एक हरे कृष्ण महामंत्र जो होने के बाद वो एक जो है राइस का दाना बाजू में निकालती थी, इस तरह से उनका काउंटिंग होता था। और शाम तक जितने बार उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र किया है उतने राइस के दाने वो एकत्र होते थे और उसको पका के फिर वो प्रसाद लेती थी इस तरह से। तो भी कितना हो, कितने हो सकते हैं दाने देखा जाए तो, अगर 100 ग्राम भी राइस बोला तो उसमें कितने दाने आ जाते हैं, इतना तो माला दिन में होगा भी नहीं उस तरह से। तो इस तरह से वो पूरा समय सिर्फ भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। और इसीलिए हम देखते हैं बाद में अनेक आचार्यगण जैसे स्वयं जीव गोस्वामी जब वो नवद्वीप की परिक्रमा करने के लिए आए थे तो समय नित्यानंद प्रभु जो है विष्णुप्रिया माता का दर्शन कराने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनको लेके आए थे श्रीनिवास ठाकुर, वो भी आए थे और श्रीनिवास ठाकुर भी आके उन्होंने विष्णुप्रिया माता उनका दर्शन लिया, उनका आशीर्वाद लिया इस तरह से। तो उनके जीवन से वो दिखा रही हैं कि उनका जीवन सिर्फ किसके लिए है, कि अपने जीवन में भले ही कोई भी, मतलब पूरा जीवन ही है भगवान की सेवा करने के लिए। और जीवन में कितनी कठिनाइयां भी आए, कोई भी चुनौती आए, कितना बड़ा भी त्याग करना हो, लेकिन उससे अगर महाप्रभु प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए वो तैयार थे। तो ये हम उनके जीवन से देख सकते हैं। विष्णुप्रिया देवी की जय। तो अभी जस्ट 5 मिनट है, मैं उसमें एक रघुनंदन ठाकुर उनकी लीला उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं रघुनंदन ठाकुर ये जो श्रीखंडा ग्राम से हैं, और मुकुंद सरकार, नरहरी सरकार और रघुनंदन, ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। मुकुंद सरकार वो अपने व्यवसाय से ही एक वैद्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको कहते थे कि मुकुंद आप भौतिक धन और आध्यात्मिक धन अर्जित कीजिए। अर्थात भौतिक धन वो अपना व्यवसाय करेंगे और साथ मतलब गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, और आध्यात्मिक धन अर्थात भगवान की भक्ति करके। और नरहरि सरकार उनको उन्होंने कहा कि आप भगवान के प्रचार में लगी है, तो नरहरि सरकार उन्होंने पूरा अपना जीवन प्रचार कार्य में दे दिया था। और रघुनंदन ठाकुर उनको कहा कि आप अर्च विग्रह की सेवा कीजिए, तो पूरा जीवन वो उनकी जो डेटीज थे गोपीनाथ उनकी सेवा में लगे रहे। तो इस तरह तीनों को उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी। और हम ये तो पास्ट टाइम जानते ही हैं कि किस तरह से रघुनंदन उन्होंने गोपीनाथ को लड्डू जो है खिलाया, और उसमें उनकी भक्ति यानी एक इनोसेंट प्रेम, जो निश्चल प्रेम है वो रघुनंदन ठाकुर उनके अंदर था। तो जैसे ही ये समाचार सबको मिला, सब वैष्णवों को, और देखा जाए तो श्रीखंडा ग्राम उनका बहुत ही सहयोग रहता था। आज भी जगन्नाथ, मतलब चैतन्य महाप्रभु के समय, अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनको मंदिर से रथ के पास लेके आते थे और रथ में उनको बिठाते थे। तो उस समय उनको बांधा जाता था रथ के ऊपर, तो उसके लिए रेशम के रस्सियां लगती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीखंडा ग्राम को उनको जिम्मेदारी दी थी, आप हर बार रथ यात्रा के समय रेशम की रस्सी लेके आ जाइए, और वो लेके आते थे। और 7 कीर्तन पार्टी होती थी, तो उसमें से 4 कीर्तन पार्टियां रथ यात्रा के समय, 4 आगे रहती थी, 2 साइड में और 1 पीछे। तो उसमें से 1 कीर्तन पार्टी श्रीखंडा ग्राम की थी जो आगे रहती थी, और उसमें मुकुंद सरकार, रघुनंदन, नरहरि सरकार ये सब नृत्य करते थे। तो जैसे ही इस समाचार, ये समाचार सब वैष्णव में फैला कि रघुनंदन उनके हाथ से स्वयं गोपीनाथ ने लड्डू खाया है या प्रसाद सीधा ग्रहण किया है, तो ये समाचार सब वैष्णव गुणगान करने लगे। और ये समाचार पता चला अभिराम ठाकुर को, जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। तो अभिराम ठाकुर ये एक अवधूत वैष्णव थे, अर्थात भगवान के प्रेम में पूरी तरह से मग्न रहते थे। तो अवधूत यानी उनका बिहेवियर नॉर्मली लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे इस तरह से, और सदैव भगवान के प्रेम में मत रहते थे। और उनके पास एक स्टिक या क्या कहते हैं चाबुक था, छड़ी थी, जिसका नाम था जय मंगल। और वो जय मंगल अगर किसी को भी मारते थे तो एक बार मारा तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था, और दूसरी बार मारा तो शायद फिर वो तुरंत गोलोक चला जाएगा इस तरह से, तो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएगा, इस तरह वो कृपा देते थे उनकी। लेकिन और किसी भी वैष्णव को देखते थे वो उनको दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन अगर वो वैष्णव में एक भी भौतिक इच्छा होगी तो वो इस देह को छोड़ देते थे, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। या अगर वो अर्च विग्रह के सामने या शालिग्राम शिला है उसके सामने भी दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन उसमें अगर भगवान नहीं है तो उसके टुकड़े हो जाते थे। तो इसीलिए अभिराम ठाकुर, उनकी बहुत इच्छा हुई कि ऐसा महान वैष्णव जिसके लिए भगवान ने स्वयं भोग ग्रहण किया है, मुझे निश्चित जाके उसको मिलना चाहिए, उसका संग करना चाहिए। और यही समाचार जब आया, पता चला श्रीखंडा ग्राम में, तो मुकुंद सरकार वो बहुत डर गए, और उनकी वहां की अभी ये आने वाले हैं तो आके दंडवत प्रणाम करेंगे, और ये 5 साल का छोटा बच्चा है, इसमें भौतिक इच्छा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए फिर ये तो बहुत बुरा हो जाएगा इसीलिए, लेकिन अभी जो अभिराम ठाकुर है उनको कौन रोक सकता है, तो वो तो आ ही रहे हैं। अभिराम ठाकुर जैसे समाचार मिला कि पास के गांव में है, फिर आ गए हैं, तो मुकुंद सरकार और उनकी माँ, उन्होंने कहा कि मुकुंद रघुनंदन को कहीं और भेज देते हैं और उनको कहीं छुपा दिया, उनको बताया नहीं कि क्या है करके, आप वहीं रहिए करके इस तरह बताया। और अभिराम ठाकुर आए तो कह रहे कहाँ पे है रघुनंदन, तो नहीं वो अभी जो हैं अपने और किसी गांव गए हैं वहाँ पे हैं, तो अभी बाद में आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रुकता हूँ। बोले नहीं आप वो कब आएंगे पता नहीं, आप जा सकते हैं अभी पता नहीं। बोले नहीं नहीं मुझे उनसे मिलना है। तो वास्तव में अभिराम ठाकुर को भी इतनी आतुरता थी कि एक वैष्णव का संग किया जाए, भले वो वैष्णव बड़ा हो या छोटा उम्र से, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वैष्णव में वो भगवान के प्रति भक्ति है, अगर उसका संग किया जाए तो हमारे अंदर भी वो भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए मतलब अभिराम ठाकुर जैसे इतने परम वैष्णव, फिर भी उनकी इच्छा थी कि मुझे वैष्णव संग करना है इस तरह से। और वहां पे रघुनंदन को ये समाचार नहीं था कि अभिराम ठाकुर आने वाले हैं करके, क्योंकि पता, अगर पता होता तो उनकी भी वही इच्छा होती कि मुझे अभिराम ठाकुर से मिलना है। और जब उनको पता चला कि अभिराम ठाकुर आए हुए हैं, और यहाँ अभिराम ठाकुर वो जो हैं मुकुंद सरकार के घर में ही थे, रुके हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब रघुनंदन आएंगे, और रघुनंदन को जब पता चला तो बहुत हट करने लगे, नहीं नहीं मुझे मिलना है, अभिराम ठाकुर आए हैं, इतने परम वैष्णव हैं, नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, मैं कैसे उनको मिल नहीं सकता हूँ। तो इतना हट करके वो आ ही गए वहाँ पे मिलने के लिए। और जैसे ही रघुनंदन को देखा अभिराम ठाकुर ने, अभी सब वैष्णव डर गए, अभी आगे क्या होगा इस तरह से। और उसी समय तुरंत अभिराम ठाकुर के पहले रघुनंदन ने दंडवत प्रणाम किया अभिराम ठाकुर, क्योंकि वो वरिष्ठ भी हैं। तो रघुनंदन ने जैसे ही दंडवत प्रणाम किया और अभिराम ठाकुर अभी चुप गए, उन्होंने दंडवत किया, और अभी मुकुंद सरकार वो देख रहे हैं बहुत डर गए, लेकिन रघुनंदन को कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही रघुनंदन उठे और तुरंत फिर भाग के सीधा जो है अभिराम ठाकुर को उन्होंने आलिंगन किया, तो दोनों वैष्णव एक दूसरे को आलिंगन करके उनके आंखों से पूरी तरह से अश्रु प्रवाह हो रहा था। तो इस तरह दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके बहुत समय तक वहीं पे रहे। और जब सब वैष्णवों ने देखा कि किस तरह से उनका एक दूसरों के प्रति प्रेम है, ये देख के सब भक्तों को बहुत ही आनंद हुआ और सबके आंखों से वो अश्रु प्रवाह हो रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैष्णव वही जो दूसरे वैष्णव को देख के या दूसरे वैष्णव का संग प्राप्त करने की इच्छा रखे और उसके साथ उस तरह से ही वो आदान प्रदान करे, तो वही वैष्णवता होती है। मतलब उनको जैसे बहुत ही जगत में अगर कोई गांव वाला व्यक्ति आ गया तो बहुत आनंद होता है, लेकिन वो आनंद और जो वैष्णव को अब दूसरे वैष्णव को देख के आनंद, तो उसमें कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है देखा जाए। तो उस तरह से यहाँ पे ये सीख रघुनंदन दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनका जीवन भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है उनकी भक्ति से, लेकिन मैंने सोचा कि ये एस्पेक्ट मैं बताता हूँ जो हमने प्रभुपाद के जीवन से भी देखा। तो देखा जाए तो प्रभुपाद के लिए बहुत सारे ऐसे गॉड ब्रदर्स, प्रभुपाद भी चाहते थे कि अपने गॉड ब्रदर्स उनके साथ अच्छी तरह से जो है संग किया जाए, लेकिन सिचुएशन या परिस्थिति ऐसी थी कि सब गॉड ब्रदर्स उनको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे या कुछ उन पर द्वेष कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ गॉड ब्रदर्स थे। जैसे स्वयं प्रभुपाद आते थे तो कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनके साथ बहुत स्नेह था। तो भले ही प्रभुपाद अभी देखा जाए तो जगत आचार्य हैं, पूरे संसार में उन्होंने अलग अलग मंदिर स्थापित किए हैं, और कृष्णदास बाबा जी महाराज वो एक साधारण वैष्णव थे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ही शिष्य हैं, और उनका तो खुद का भी मठ नहीं था, वो अलग अलग मठ में रहते थे इस तरह से। और वो लेकिन भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, सुबह से शाम तक या पूरा दिन रात वो बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। तो सब जानते थे कि कृष्णदास बाबा जी महाराज परम वैष्णव हैं। तो जब प्रभुपाद आते थे वृंदावन में, तो जैसे ही कृष्णदास बाबा जी महाराज से मिले तो दोनों घंटों घंटों कृष्ण की चर्चा करते रहते थे और पूरी तरह से डूब जाते थे। मतलब भले ही समय कैसा चला गया है, क्या हो रहा है दिन रात, और बाकी सब भक्त देख के आश्चर्य हो जाता था उनको कि उनके शिष्य देखे कि ये हंस रहे हैं और एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, पूरी तरह से कृष्ण में पूरी तरह से लीन है। देखे कि पता चलता कि हाँ किस तरह से वैष्णव का संग किया जाता है या वैष्णव के समय व्यक्ति पूरी तरह से भूल जाता है। तो वही हम किसी और का नहीं, लेकिन अगर वैष्णव का आश्रय लेते हैं तो वही हमको कृष्ण का आश्रय लेने में सिखाते हैं और वहीं पे हमें असली आनंद प्राप्त हो सकता है। तो इन वैष्णवों के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी है और ये एटलीस्ट मुझे थोड़ा डायरेक्शन मिलता है कि हाँ क्या करना चाहिए मुझे अपने जीवन में। वास्तव में बहुत दूर है जो उन्होंने आदर्श दिखाया है उसके लिए। तो आज के दिन इन सब वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि उनका पूरा जो कृपा है, क्योंकि आज के दिन वो अपनी पूरी कृपा देने में बहुत, हर रोज वो कृपा देते हैं लेकिन आज स्पेशल दिन है कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि उनका जो जीवन है या उनका शिक्षा हम आत्मसात करके जो भगवान हैं उनकी और उनके भक्तों की सेवा में लगे रहें। विष्णु प्रिया देवी की जय, रघुनंदन ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।